नंदिनी उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वो अब तक ढूंढ रही थी। उसकी नजरें समर्थ पर ही टिक गई थीं। उसने इप्सिता के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा, ये कौन है ईशु? कितना हॉट और हैंडसम है। जीजू ने तो हमें बताया ही नहीं था कि उनका कोई छोटा भाई है क्या? इप्सिता का मूड पहले से ही खराब था। नंदिनी के सवालों ने उसे और भी ज्यादा चिढ़ा दिया। नंदिनी को घूरते हुए इप्सिता ने कहा, हमें क्या पता, होगा कोई। नंदिनी ने इप्सिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़के को घूरते हुए मुस्कुराने लगी। समर्थ की तरफ देखते हुए नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, यार ईशु, अगर ये जीजू का भाई है तो तू अपनी शादी के बाद इससे मेरी बात चलाना। मुझे तो बड़ा हैंडसम और हॉट लग रहा है ये। सच में अगर मैं इसके साथ सेटल हो गई तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु का कोई भाई नहीं है और प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी, हमें वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर समर्थ को घूरते हुए कहा, अगर ये जीजू का भाई नहीं है तो ये उनका कजिन या फ्रेंड होगा। चलो वैसे अच्छी बात है, अगर कजिन भाई या कोई फ्रेंड भी है मुझे तो फिर भी ये पसंद है। नंदिनी समर्थ को देखकर मुस्कुराती जा रही थी, लेकिन समर्थ ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो वहां पर सामने बैठे बाकी सारे लोगों की तरफ देख रहा था। इसी बीच वहां पर खड़े उदय ने नंदिनी के मुंह से ये बात सुन ली और वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने नंदिनी की बातें सुनकर धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और चुपचाप इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हो गया। एक हफ्ते में शादी की बात सुनकर इप्सिता का मुंह बन गया था और उदय जानता था कि इप्सिता के लिए उसके एग्जाम कितने जरूरी हैं। इसलिए जब उदय ने देखा कि नंदिनी समर्थ को देखने में व्यस्त हो गई है तो वो धीरे से इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हो गया। उदय ने धीमी आवाज में कहा, ईशु, अगर तुम कहो तो मैं अभी मॉम डैड से बात करूं, एटलीस्ट वे लोग तुम्हारे एग्जाम तक तो रुक सकते हैं ना, और अभी तो कुंवर सा भी यहाँ पर हैं। इप्सिता ने उदय की बात सुनी और वो उदय की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन उदय जैसे ही बात करने के लिए आगे बढ़ा, इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दीजिए उदय भाई, मैं नहीं चाहती कि अभी यहाँ पर मम्मी पापा आप पर अपना गुस्सा निकालें, घर चलकर हम खुद मम्मी पापा से बात करेंगे। इप्सिता की बात सुनकर उदय रुक गया और वो वहीं उसके बगल में ही खड़ा हो गया। समर्थ ने अभिमन्यु से बात करने के बाद कहा, मिलाओगे नहीं हमें हमारी होने वाली भाभी सा से? अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर मासा की तरफ देखने लगा। तभी मासा ने कहा, जाइए अभिमन्यु, समर्थ को इप्सिता से मिलवाइए। रानी सा की बात सुनकर अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो समर्थ को इप्सिता के सामने ले आया। उसने इप्सिता की आंखों में देखा, उसकी आंखों में उसे एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। अभिमन्यु उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने समर्थ से उसको मिलवाते हुए कहा, समर्थ, ये है इप्सिता सूर्यवंशी, हमारी मंगेतर, और इप्सिता, ये है हमारा बेस्ट फ्रेंड समर्थ शेखावत। समर्थ ने इप्सिता के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो भाभी, आई वॉन्ट टू से दैट यू आर सो प्रिटी। इप्सिता समर्थ के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी सी असहज हो गई, क्योंकि वहां पर सभी लोग बैठे थे। इप्सिता ने उससे हाथ मिलाया और धीरे से थैंक यू कहा। तभी अभिमन्यु ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, और ये है इप्सिता के बड़े भाई मिस्टर उदयवीर सूर्यवंशी। समर्थ ने उदय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो उदय, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने आपको कहीं देखा है। उदय ने समर्थ की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ये तो हमें भी याद नहीं आ रहा कि हमने एग्जैक्टली आपको कहाँ देखा है, लेकिन कहीं तो देखा है। खैर कोई बात नहीं, जब याद आएगा तब देखा जाएगा, समर्थ ने थोड़ा सा सोचकर मुस्कुराते हुए कहा। इसी बीच समर्थ की नजर इप्सिता के पीछे खड़ी नंदिनी पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुराती जा रही थी। समर्थ ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अभिमन्यु ने कहा, और हाँ समर्थ, इनसे मिलो, ये है इप्सिता की बेस्ट फ्रेंड मिस नंदिनी। समर्थ ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे, यू आर सो क्यूट नंदिनी। नंदिनी ने जैसे ही समर्थ के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी, वो खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच, यू आर ऑल्सो वेरी हैंडसम। उदय नंदिनी को इस तरह समर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते देख उसे घूरने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद इप्सिता के माता पिता उठकर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है रानीसा, हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। रानीसा ने जैसे ही उनकी बात सुनी, उन्होंने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे नहीं, पहली बार आप हमारे घर आए हैं, खाना तो खाकर जाना ही होगा। रानीसा ने वहां पास में खड़े एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, खाना लगवाइए। इप्सिता के पिता आगे बढ़कर बोले, माफ कीजिएगा रानीसा, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता और आपने तो हमारी पहले ही इतनी खातिर कर ली है, अब प्लीज हमें खाने के लिए मत रोकिए। सुहासिनी जी ने भी अपने पति की बात से सहमत होते हुए कहा, जी हाँ रानीसा, खाना पीना हम फिर किसी और दिन करेंगे, अभी हमें इजाजत दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर रानीसा ने और कुछ नहीं कहा और वे सब बाहर निकलने लगे। अभिमन्यु की नज़र इप्सिता पर ही टिकी हुई थी। इप्सिता काफी ज्यादा उदास हो गई थी और खोई खोई सी लग रही थी। रानीसा इप्सिता के पास आई और उन्होंने इप्सिता को अपने गले लगाते हुए कहा, अब आपकी बेटी कुछ ही दिनों में हमारे घर की लक्ष्मी बन जाएगी, हमारी बहू का ध्यान रखिएगा। इप्सिता रानीसा की ये सारी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली और उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ ही देख रहा था। अभिमन्यु को नोटिस करके समर्थ ने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अभी तो शादी में एक हफ्ता है और तेरी नजरें तो अभी से अपनी होने वाली बीवी पर टिक गई हैं। थोड़े दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद वो तुम्हारे पास ही रहने वाली है। अभिमन्यु ने समर्थ को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उदय इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है रानीसा, हम भी चलते हैं। इतना बोलकर उदय ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार में आ गया। नंदिनी समर्थ और अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, लेकिन जब उदय इप्सिता को लेकर गया तो वो भी भागते हुए पीछे पीछे गई और कार में जाकर बैठ गई। नंदिनी जैसे ही कार में बैठी, उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, यार जीजू का दोस्त तो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। उदयवीर जो कार ड्राइव कर रहा था, उसने शीशे में नंदिनी की तरफ देखा जो बैक सीट पर अकेली बैठी थी, और इप्सिता जो उदय के बगल में बैठी थी वो कहीं खोई हुई थी। तभी नंदिनी ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो मेरी बात सुन रही है ना? इप्सिता अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ, क्या कहा? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या सोच रही है तू? अभी भी अपने एग्जाम के बारे में सोच रही है क्या? इप्सिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके इस तरह चुप रहने पर नंदिनी भी बिल्कुल शांत हो गई। थोड़ी ही देर बाद वे लोग घर पहुंचे और इप्सिता जैसे ही अपने घर के हॉल में आई, उसने देखा कि उसके माता पिता भी हॉल में आकर बैठे हुए थे। इप्सिता ने तुरंत ही अपनी माता पिता की तरफ घूरते हुए कहा, ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी पापा आप दोनों मेरे साथ? इप्सिता इतनी देर से ये बात अपने मन में दबाकर बैठी हुई थी, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला वो तुरंत ही अपने माता पिता से इस बारे में सवाल करने लगी। क्रमशः